राहुल मित्तल संजना के साथ इंडिया आ चुका था और इस वक्त वो दोनों आलिया के घर पर थे। आते ही राहुल और संजना माया से मिले। विक्रांत इस वक्त काम के सिलसिले में बाहर था। रुद्राक्ष ने जो भी किया था उसके बाद संजना काफी परेशान थी, ये उसके चेहरे से ही नजर आ रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हो रहे थे और आंखें लाल भी थीं, जिससे साफ था कि उसने अपनी पिछली रातें रोते हुए जागकर बिताई थीं। मेकअप भी उसके चेहरे की मायूसी को छुपा नहीं पा रहा था। माया को संजना बहुत पसंद थी। जब उसने संजना का ये हाल देखा तो उसने संजना को देखते ही अपने सीने से लगा लिया। उसके गले लगते ही संजना रोते हुए बोली, दादी प्लीज़ डू समथिंग, मैंने हमेशा वही किया है जो आपने करने को कहा था। आपने कहा कि थोड़ा वेट करो और पेशेंस रखो, तो मैंने वही किया, लेकिन देखा इन सब का क्या नतीजा निकला। वो लड़की मेरे रुद्राक्ष को मुझसे छीन कर लेकर चली गई। माया ने संजना की पीठ को सहलाते हुए कहा, उदास मत हो, हम जानते हैं कि इस वक्त तुम कौन से दौर से गुजर रही हो। मर्द हमेशा बेवकूफ़ होते हैं, उन्हें अपनी बर्बादी से ही प्यार होता है। जो उन्हें दिल से प्यार करती है वो उस औरत को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, और यकीन करो कि ये हम अपने तजुर्बे से कह रहे हैं। संजना माया से अलग हुई और धीमी सिसकती आवाज में बोली, दादी मुझे अब और छूट नहीं सुनना है। क्या मेरा रुद्राक्ष मुझे कभी वापस मिलेगा? मुझे बता दीजिए ताकि मैं कोई झूठी उम्मीद न रखूं। हम झूठी उम्मीद देते भी नहीं हैं। रुद्राक्ष आपसे प्यार कर पाएंगे या नहीं ये हमारे बस में नहीं है, पर हाँ शादी तो उनको आपसे करनी ही पड़ेगी, बस थोड़ा वक्त दीजिए, माया ने प्यार से कहा। हर बार की तरह संजना ने माया की बात को मान लिया था। ये देखकर राहुल ने राहत की सांस ली, वरना वो पिछले कई दिनों से संजना को समझाने की कोशिश कर रहा था। वो ठीक से खाना तक नहीं खा रही थी। संजना से बात करने के बाद माया ने राहुल की तरफ देखा। राहुल आंखों ही आंखों में उन्हें बहुत कुछ कहना चाहता था, जिन्हें माया बिना बोले ही समझ सकती थी। राहुल के चेहरे पर एक पिता की परेशानी नजर आ रही थी। माया ने फिर संजना की तरफ चेहरा किया और उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, अच्छा आपने एक बात तो सुनी होगी कि किसी भी लड़के को अपने पास लाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और जिसमें सबसे पहली चीज़ आपकी शख्सियत होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप रुद्राक्ष से जाकर प्यार से बात कीजिए, लेकिन खुद को मेंटेन तो करके रखिए। कितनी कमज़ोर हो गई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से खाना नहीं खाया और ना ही चैन से नींद ली है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है दादी, फिर ऐसे में खाना सोना किसे सूझता है? अब तो उसी दिन चैन से अपना मनपसंद का खाना खाऊंगी जिस दिन रुद्राक्ष मेरे पास आएगा। मुझे उसी की बाहों में सोना है दादी, संजना ने सख्ती से कहा। बहुत ज़िद्दी हो तुम, बिल्कुल हमारी तरह। हमने आपसे थोड़ा टाइम मांगा है, तो रुद्राक्ष को आपके पास आने के लिए वक्त देना होगा। तब तक क्या आप बिना खाए पिए रहेंगी? माया ने थोड़ा सख्ती से कहा। लेकिन दादी, संजना ने बीच में बोलना चाहा, पर माया ने उसे चुप करवा दिया था। माया संजना की बात बीच में काटते हुए बोली, आप जानती हैं ना कि सभी बच्चों में आप सबसे फेवरेट हैं हमारी, क्योंकि आप बिना किसी जिद के हमारी सारी बातें मान लेती हैं। हम आपको परेशान नहीं देख सकते हैं। अभी कुक को बोलकर आपकी फेवरेट सभी डिशेस बनवाते हैं और साथ में खाएंगे। रही बात सोने की, तो आज हम अपनी गोद में तुम्हें प्यार से सुलाएंगे। संजना ने बिना किसी जिद के हाँ में सिर हिला दिया। बचपन में उसने अपनी माँ को खो दिया था, ऐसे में माया ने हमेशा उसे माँ का प्यार दिया था। जब वो छोटी थी तब से ही माया के पास आती थी। संजना माया को वहाँ से ले जाने लगी। जाने से पहले उसने राहुल की तरफ मुड़कर देखा और भौहें उठाकर कहा, कोई भी प्लानिंग हमारे बिना मत करना, क्योंकि रुद्राक्ष को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब तक इन लोगों ने हमारी सुनते हुए रुद्राक्ष के साथ हमारे हिसाब से बर्ताव किया था तब तक बिल्कुल ठीक था। हाँ आप ही की एडवाइस चाहिए थी, तभी इतनी दूर से यहाँ आया हूँ। खैर आप संजना को संभालिए, तब तक शायद विक्रांत को भी आने में टाइम लगे, राहुल ने जवाब दिया। माया ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर संजना को वहाँ से ले गई। संजना माया के पास काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी, वही राहुल चाहता था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में जन्नत ईशानी को लेकर मेले में गई थी, जो जैन के घर से थोड़े ही आगे लगा हुआ था। संडे होने की वजह से आज वहां अच्छी खासी भीड़ दिखने लगी। उस एरिया में ज्यादा लोग नहीं रहते थे, पर जितने भी लोग थे वो लगभग उस मेले में आए हुए थे। वहां काफी सारे सोल्जर भी घूम रहे थे। उन्हें देखकर ईशानी परेशान हो गई, हालांकि उसका चेहरा बुरके से छुपा हुआ था। ईशानी ने जन्नत का हाथ पकड़ा और उसके कान के पास आकर धीमी आवाज में कहा, यार यहाँ तो इतने सारे आर्मी ऑफिसर हैं, अगर गलती से भी पकड़े गए तो बहुत बुरे वाले फंसेंगे। सिर्फ हम ही नहीं, जैन पर भी बात आ जाएगी। अरे आप खामखा परेशान हो रही हैं और हमें भी कर रही हैं, जन्नत ने गहरी सांस लेकर कहा। ये पाकिस्तान है मेरी जान, यहाँ पर्दे में जो औरतें होती हैं उनका पर्दा हटाकर उनसे सवाल जवाब करना सबसे बड़ी गुस्ताखी मानी जाती है। चलो अब इंजॉय करो। ईशानी ने उसकी बात पर हामी भरी, हालांकि अंदर से उसका दिल काफी घबरा रहा था। बुर्का तो जन्नत ने भी डाल रखा था ताकि कोई उसे वहां पहचाने नहीं। उनके अलावा और भी कई लड़कियों और महिलाओं ने हिजाब और बुर्का डाल रखा था और वहां बेफिक्री से घूम रही थी। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। कुछ देर बाद ईशानी को भी वहां रिलैक्स फील होने लगा जब उनके आसपास कोई नहीं था। ईशानी और जन्नत ने वहां मेले से काफी सारे कपड़े ज्वेलरी खरीदी और स्ट्रीट फूड भी खाया। काफी देर वहां मस्ती करने के बाद ईशानी ने कहा, हमें यहां आए हुए 2 घंटे से भी ज्यादा होने को आए हैं, अब तक तो कैप्टन साहब भी आ गए होंगे, चलते हैं ना जन्नत? अभी झूले झूलना बाकी है। 2 घंटे से आराम से घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे। जब 2 घंटे में किसी ने नहीं पकड़ा तो आगे कौन पकड़ेगा? मैंने कहा ना, आप अपने डर को छोड़कर मजे से चिल कीजिए, जन्नत ने जवाब दिया। ईशानी जन्नत को बार बार समझा रही थी पर वो कहां रुकने वाली थी। आखिर में उन्होंने एक रोलर कोस्टर राइड ली। पहले तो ईशानी उसे बना कर रही थी पर बाद में उसे भी बहुत मजा आ रहा था। जब ईशानी झूले में ऊपर जन्नत के साथ थी तो उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो नीचे सब कुछ देख पा रही हो। ऐसे लग रहा है जैसे इतने दिनों बाद उसने खुली हवा में सांस ली है। थैंक यू सो मच जन्नत, इतने अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, ईशानी ने मुस्कुरा कर कहा। वेलकम मेरी जान, अब तुम चाहो तो अपना पर्दा हटा सकती हो। यहाँ इतनी दूर से किसी की आंखें ठीक भी होगी तब भी वो हमें नहीं पहचान पाएगा, जन्नत ने हंसते हुए कहा और अपने बुरके से अपना चेहरा बाहर निकाल लिया था। उसके कहने के बाद भी ईशानी ने अपना पर्दा नहीं हटाया था, लेकिन हवा से उसका बुरका उड़ गया था और चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा तब हुआ जब रोलर कोस्टर नीचे आया था। अचानक ही रोलर कोस्टर के पास में आहत था और उसने ईशानी को देखते ही उसे पहचान लिया था। अरे वाह, क्या बात है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, इतनी आसानी से लड़की मिल गई, लगता है हमारी दुआ रंग लाई। अब तो तुम मालामाल होने वाले हो कैप्टन अहद, अहद ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। ईशानी रोलर कोस्टर से नीचे उतर गई थी, उसके साथ जन्नत भी थी। अब वो घर को जा रही थी लेकिन इस मुसीबत से अनजान कि उनके पीछे अहद भी आ रहा था।
रास्ते में चलते हुए अहद ने अपने वॉकी टॉकी में वॉइस मैसेज छोड़ते हुए कहा, जनरल मुझे एक लड़की का पता चला है जो इंडिया से यहाँ छुप कर रह रही है, उसे एक आर्मी ऑफिसर ने अपने यहाँ पनाह दे रखी है और मैं एक बात को लेकर श्योर हूँ कि वो लड़की जासूस है। प्लीज़ आप पूरी टीम के साथ मेरी भेजी हुई लोकेशन पर आइए। अहद ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, आपके प्लेन से चल रहा हूँ विक्रांत साहब, ये लड़की अब पाकिस्तान की जेल में सड़ती रहेगी, जब तक आप चाहेंगे तब तक। विक्रांत ने अहद को यही ऑर्डर दिए थे कि वो ईशानी को अरेस्ट कर ले और फिर उसकी तस्वीर भेजे ताकि वो रुद्राक्ष को ब्लैकमेल कर सके। अहद उनके प्लान के हिसाब से ही चल रहा था।